समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे आपको लेकर देश की परिक्रमा पर भी और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जन्मदिवस या जयंती है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार सरफिरोजी, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस मंडे एडिशन ऑफ परिक्रमा। एंड यस, सरफिरोजी हैज ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या कुछ खास होता है हमारे शो में। एंड यस, ऑफ कोर्स वी विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रिब्यूट्स एज वेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। और काफी जानी मानी हस्तियां हैं, खासतौर से कर्नाटक म्यूजिक के दिग्गज
में बहुत कुछ है।
यस एब्सोल्युटली, कर्नाटक म्यूजिक के एक स्टॉलवर्ट हैं ऑफ द ट्रिलॉजी, वन ऑफ द ट्रिलॉजी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, तो उनको हम ऑफ कोर्स ट्रिब्यूट देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डेटलाइन इंडिया, बट सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव किए जाने के संबंध में कथित टिप्पणी पर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ।
President Draupadi Murmu says the task of bringing people affected by left-wing extremism to mainstream has reached its final stage.
दक्षिण कोरिया की संवैधानिक न्यायालय ने महाभियोग लगाकर हटाए गए प्रधानमंत्री हान डक सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल किया।
Benchmark domestic equity indices today extend their upward momentum for the sixth consecutive session to settle with gains of over 1% each.
मौसम विभाग ने प्रायद्वीपीय और उत्तर भारत में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, दिल्ली कैपिटल्स टू फेस लखनऊ सुपर जॉयंट्स इन विशाखापट्टनम दिस इवनिंग। And now it's time for Dateline India, in which we take a look at the developments that are taking place at the national or global level. And today is a very important day. Yes, we are going to talk about World TB Day. Every year, 24th of March is observed as World TB Day to amplify the urgency of ending tuberculosis or TB, which is the world's deadliest infectious disease. TB continues to devastate millions globally, inflicting severe health, social and economic consequences. This day serves as a crucial reminder of the ongoing fight against bacterial infection, which primarily affects the lungs. TB spreads through airborne particles released when an infected person coughs, sneezes or spits. Fortunately, it is both preventable and treatable now. The theme for World Tuberculosis Day 2025 is Yes, We Can End TB, Commit, Invest, Deliver. This theme emphasizes the importance of sustained commitment, financial investment, and effective delivery of interventions that are critical to TB prevention, diagnosis, treatment, and care. Or, Sir Firozi, agar aapko yaad ho ke ab to, as we say, that it's preventable and treatable, but there was a time when TB was a very fatal disease and many people used to succumb to it.
तो जी, और साहिर, अगर इस बीमारी के इतिहास की बात की जाए तो तपेदिक शब्द का पहली बार प्रयोग जोहान शॉल्ले ने सन 1834 में किया। हालांकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाली ये बीमारी काफी समय से मौजूद है। पूरे इतिहास में टीबी को विभिन्न नामों से जाना जाता रहा। यूनानियों ने इसे फेथसिस, इब्रानियों ने शेचिफित और रोमनों ने टैप्स कहा। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसे आमतौर पर श्वेत प्लेग या श्वेत रोग के रूप में जाना जाता था। और इसका कारण यह था सायरा कि जिन लोगों को ये बीमारी होती थी, ये लोगों को पीला और दुर्बल बना देती थी, इसलिए इसे अक्सर श्वेत प्लेग कहा गया। 24 मार्च 1882 को एक बड़ी सफलता मिली जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की, जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार जीवाणु है। एक सदी से भी अधिक समय बाद इस खोज का सम्मान करने के लिए उसी तारीख को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया और ये दिन टीबी के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रसार को रोकने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है.
Yes, indeed. And of course, those affected by TB do become very weak and pale, as you said. And although TB is preventable and curable now, it still remains one of the deadliest infectious diseases. This disease killed around 1.25 million people worldwide in 2023. That is just 2 years ago, you can say.
Mm-hmm.
Not even 2 years, 1.5 years ago, roughly. And that it has surpassed all other infectious diseases in mortality. World TB Day is a platform to educate people about the potential impact, transmission and prevention strategies. World Tuberculosis Day holds immense significance as it raises public awareness about the devastating health, social and economic impact of TB. It serves as a global rallying point to intensify efforts in combating the tuberculosis epidemic. Aur khas taur se TB ke mareezon ko aap dekhte hain because it's a highly infectious disease. To agar ghar mein bhi jo ho jate hain unko jo hai alag rakha jata hai, you know, taaki dusre logon ko na ho, which again, I think it really, you know, takes a toll on the mental health of the patient as well.
Patient ko bahut alag thalag mehsoos hota hai, par ye zaruri bhi hai kyunki infectious disease hai ye.
Yes, absolutely. So it is very important ke aap uske vaccines le, and you know, you agar aap infected already ho gaye hain to uska pura course hota hai, usko pura kare. It's very, very important.
Ji bilkul. Aur Saira, Bharat sarkar ne TB ke mamlon ka pata lagane ke liye 33 rajyon aur kendra shasit pradeshon ke 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले 2015 और 2023 के बीच प्रति 1,00,000 की आबादी पर 237 से घटकर 195 रह गए हैं. तो कह सकते हैं कि सायरा, जिस तरह हमने पोलियो की बीमारी को जड़ से खत्म करने में जो प्रगति की, उसी तरह से हम इस बीमारी को भी देश से जड़ से खत्म करने में तरक्की करें. और ये प्रगति राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता को दर्शाती है. हालांकि भारत 2025 तक टीबी के मामलों को घटाकर 1,00,000 की आबादी पर 10 मामले लाने के अपने लक्ष्य से बहुत दूर है, पर हम उम्मीद करते हैं कि हम इस क्षेत्र में तरक्की करें और जल्दी से जल्दी इस बीमारी को खत्म किया जाए देश से.
जी बिल्कुल. और आज भी बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड टीबी डे, सो अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस वर ऑर्गेनाइज्ड, यू नो, अबाउट इट्स अवेयरनेस. सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, he today called for people to reaffirm their commitment to eliminate tuberculosis, that is TB, and improve the health outcomes for vulnerable populations on the occasion of World TB Day. In a social media post, the health minister extended gratitude to all healthcare workers delivering comprehensive support to TB patients. He said that together the citizens can create a TB Mukt Bharat or TB Free India and work towards better health for all. And in fact, हमारे आज AIR के भी show public speak में इसी यही मौजू है.
बिल्कुल.
And it's a live phone-in program which is bilingual. Public speak at 9:30 PM tonight. Please tune in because we'll bring an insightful discussion on prevention and cure of tuberculosis with Dr. Urvashi B. Singh, who is the Deputy Director General in the Ministry of Health and Family Welfare, and Dr. Rohit Kumar, who is the Head of Department Pulmonary Medicine at Safdarjung Hospital in New Delhi. To participate in the program, all you have to do is just simply dial the phone numbers, and they are 011-2342-1050 and 011-2331-4444. I can repeat the numbers for you: 011-2342-1050 and 011-2331-4444. So don't forget public speak at 9:30 PM tonight. You can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044, or post your questions on our social media platform X with the hashtag AskAIR.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चलेंगे देश भर की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है. कहां से शुरू करें सायरा?
यस, वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी ऑफ परिक्रमा फ्रॉम उड़ीसा, where the Dant Nach is being observed these days. Well, Dant Nach is a distinguished ritual dance that originates from western Odisha and harmoniously integrates devotion with artistic expression. The significant rite is celebrated annually in the month of Chaitra, which falls roughly in March and April, and resonates profoundly with spiritual meaning, epitomizing penance and unwavering dedication to Lord Shiva and Goddess Kali. With its roots entrenched in rural Odisha, Dand Nach serves as a vibrant emblem of the region's rich cultural identity. Our Sambalpur correspondent provides further insights.
Danda denotes punishment, representing the dimension of penance, while Nach translates to dance. Devotees affectionately referred to as Dandwas undertake a rigorous vow of austerity lasting either 13 or 21 days. Throughout this transformative duration, they abstain from food and immerse themselves in profound rituals, heartfelt prayers and celebratory dancing. These individuals traverse villages performing in reverence of the deities. Esteemed education and member of the Odisha Sahitya Academy, Dr. Devasis Pandya offers the following insights.
Dand Yatra ya Dand Nad Odisha ka ek prachin lok kala hai. Paschim aur dakshin Odisha mein ye bahut prachalit hai. Dand Nad ek dharmik aur sanskritik natyavidhi hai. Har saal Chaitra ka mahine mein ye shuru hota hai. Ye Odisha ka ek prasiddh lok nritya utsav hai. Isme dharmiya bhavana aur nritya geet abhinay ka mishran hota hai. Ye nritya mukhya roop se Bhagwan Shiv aur Maa Kali के लिए किया जाता है. यह आयोजन चार चरणों में होता है, जैसे कि धूलिदंड, पानीदंड, अग्निदंड, सुवांग और लीलादंड. गांव का हर जाति का लोग इसमें शामिल होते हैं. धर्म के प्रति गंभीर निष्ठा प्रदर्शन इस यात्रा का एक खास बात है. इनमें जो नृत्य गीत का परिवेशन किया जाता है, उसमें से उड़ीसा का प्राचीन लोक संस्कृति, लोकभाषा का स्वरूप उन्मोचित होता है. इसी हिसाब से दंड यात्रा या दंड नाट धार्मिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है.
In addition to its religious importance, Danda Nacha fosters social cohesion within the community. Villagers congregate to celebrate, offer prayers and support the performers, creating a shared experience of devotion that enhances their communal connections. Danda Nacha transcends the definition of a mere dance. It exemplifies Odisha's folk heritage, showcasing resilience and cultural pride. To ensure its continuity, we must safeguard its essence while adapting to contemporary sensibilities. For Parikrama, Supriti Misra, Akashvani, Sambalpur.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के अति सुदूर गांव तिमेनार में मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना के तहत आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार बिजली पहुंची है. ये ऐतिहासिक उपलब्धि माओवादी आतंक के अंधकार को चीरकर विकास, अमन और शांति के नए सवेरे की ओर कदम बढ़ाने का प्रतीक है. पेश है हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट.
तिमेनार गांव में अब भय की जगह उजाला और आतंक की जगह उम्मीद ने ले ली है. गांव के 53 घरों में 100% विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है, जिससे पूरे गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल है. छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में स्थित भैरमगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेचापाल के आश्रित गांव तिमेनार के निवासियों ने पीढ़ियों तक बिजली की रोशनी नहीं देखी थी. अब जब शासन प्रशासन ने इन दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँच बनाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना शुरू कर दिया है, तो ग्रामीणों को समाज के धारा से जोड़ने का सपना साकार हो रहा है. गांव के निवासी मशराम, पंडरू कुंजाम, मंगली और प्रमिला वेको ने बताया कि गांव में पहली बार बिजली पहुंची है और अब उन्हें रात के अंधेरे से डर नहीं लगता. जंगली जानवरों जैसे सांप बिच्छू के भय से भी मुक्ति मिली है. बच्चों की पढ़ाई लिखाई आसान हो गई है और अब वे भी विकास की दौड़ में शामिल हो रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अब न केवल आतंक और भय का माहौल समाप्त हो रहा है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी सुधर रही है. तिमेनार में हुआ विद्युतीकरण बस्तर के दूरस्थ अंचलों में सुशासन और विकास के नए युग की शुरुआत का संकेत है. अब यह क्षेत्र माओवाद के डर से मुक्त होकर समृद्धि और उजाले की ओर अग्रसर हो रहा है. तिमेनार अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि बस्तर के बदलाव की जीवंत मिसाल बन गया है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला.
And now let's talk a bit about the World Audiovisual and Entertainment Summit that's going on. As part of the WAVES or World Audiovisual and Entertainment Summit, WAM, the Anime and Manga Contest, was held in Mumbai, where amateurs and professionals alike participated, bringing iconic characters to life. organized at Whistling Woods International. The event also saw enthusiastic participation in cosplay, webtoon and voice acting competitions. Winners from all the categories were felicitated by the jury and dignitaries present on the occasion, including the President of the Media and Entertainment Association of India, Sushil Kumar Bhasin. The first World Audio Visual and Entertainment Summit, WAVES, will be hosted by the Government of India in Mumbai from 1st to 4th of May 2025. As part of this initiative, the Ministry of Information and Broadcasting, in collaboration with the Media and Entertainment Association of India, is organizing WAM, or the WAVES Anime and Manga Contest, under the Create in India Challenge. The previous editions of WAM were successfully conducted in Guwahati, Kolkata, Bhubaneswar, Varanasi and Delhi. और परिक्रमा का सिलसिला जारी रखते हैं, कहाँ चलते हैं अब?
अब सायरा चल रहे हैं बिहार, जहाँ तीन दिवसीय बिहार दिवस समारोह का आज समापन हो जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां होंगे। बिहार दिवस समारोह में राज्य के 18 विभागों ने भव्य पवेलियन के माध्यम से लोगों को कई प्रकार की जानकारियां दी। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
दिवसीय बिहार दिवस उत्सव उन्नत बिहार और विकसित बिहार के संकल्प के साथ मनाया गया। इस दौरान गांधी मैदान पटना में मुख्य राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। कला, संस्कृति और आधुनिकता के संगम का जीता जागता स्वरूप देखने को मिला। शहर के अलग अलग प्रेक्षागृहों में आयोजित गीत संगीत और नाटक के कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार की विरासत, गौरवशाली अतीत और विकास के पथ पर बढ़ते बिहार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित व्यंजन मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा, जहां लोगों ने लिट्टी चोखा, मखाना के उत्पाद, खुरमा, बेलग्रामी जैसे पारंपरिक व्यंजनों और मिठाइयों के साथ साथ वर्तमान प्रचलित स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया। हस्तशिल्प और कला जगत के लोगों के लिए भी यह आयोजन काफी प्रमुख रहा। उद्योग विभाग के पवेलियन में मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला, सिक्की आर्ट से कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों का प्रचार किया। मधुबनी पेंटिंग की कलाकार सुजाता मिश्रा ने बातचीत में कहा कि यह एक प्रमुख मंच रहा, जहां से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने मधुबनी पेंटिंग को सही मायने में बिहार की अस्मिता का प्रतीक बताया।
मिथिला पेंटिंग को बहुत बढ़ाया, बहुत बिहार को बहुत आगे ले गया, इतना तो तय है। हमारे बिहार में तो मिथिला म्यूजियम है नहीं, अभी एक बिहार म्यूजियम बहुत अच्छा हुआ है, जो थोड़ा बहुत मिथिला पेंटिंग का काम हो रहा है या कर रहे हैं। लेकिन एक जैसे मिथिला म्यूजियम जैसे जापान में है, जो टोक्यो हासी संगावा बनवाए हैं, वो चीज यहाँ नहीं है, जो कि यहाँ होना चाहिए। ये थोड़ा सा खलता है, जब हमारी परंपरागत शैली, जो परंपरागत शैली है, जो रामचंद्र जी के समय से ये चलती आई है, वो हमारे देश में नहीं है, इसकी जरूरत है।
बिहार का 113वां स्थापना दिवस कई अन्य मायनों में भी काफी खास रहा। यहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान सभी वर्ग के लोगों को बदलते बिहार के गवाह बनने का अवसर मिला। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में अब बात खेल के मैदान की। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात भारत के यूकी भांबरी और पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस की जोड़ी का सामना चेक गणराज्य के एडम पावलासेक और ब्रिटेन के जेमी मरे से होगा। भांबरी और बोर्गेस ने राउंड ऑफ 32 में भारत के अनुभवी खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी को हराया। 32 वर्षीय भांबरी मियामी ओपन के अंत तक एटीपी रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले डबल्स प्लेयर बनने की ओर अग्रसर हैं। कल की जीत के बाद भांबरी लाइव एटीपी डबल्स रैंकिंग में 29वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि 45 वर्षीय बोपन्ना 43वें स्थान पर खिसक गए।
And in IPL cricket, Delhi Capitals will face Lucknow Super Giants at Dr. Vice Rajashekhara Reddy Cricket Stadium in Vishakhapatnam today. The match will begin at 7:30 p.m. This is for the second consecutive year. The Capitals have chosen Vishakhapatnam as their second home ground. They will play twice in the city in the tournament's opening week.
और राष्ट्रीय राजधानी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पांचवें दिन भी विभिन्न स्पर्धाओं में एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। निशानेबाजी में मोना अग्रवाल ने आज डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 मिक्स्ड श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। वहीं आनंद कृष्णन ने रजत और सचिन सिद्धनवर ने कांस्य पदक जीता।
And in business news, well, the benchmark domestic equity indices today extended their upward momentum for the sixth consecutive session to settle with gains of over 1% each. The market sentiment was driven by a rally in banking, financial services and realty sectors amid renewed optimism over reversal in foreign fund outflows and bargain buying. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, surged 1,079 points to close at 77,984. The National Stock Exchange Nifty 50 jumped 308 points or 1.32% to settle at 23,658. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 88,250 rupees per kg, per 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 98,430 rupees per kg. And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
On the 24th of March 1902, the revolutionary organization Anushilan Samiti was formed by freedom fighter Pramathanath Mitra in Bengal Presidency. It was headed by Barindra Kumar Ghosh, the younger brother of Sri Aurobindo Ghosh. A number of nationalists were associated with it at various times, notably Aurobindo Ghosh, Bhupendranath Datta, Deshbandhu Chittaranjan Das, Surendranath Tagore, Pulan Bihari Das, Sarla Devi, Rash Bihari Bose, Bagha Jatin, Sachendranath Sanyal, Jatin Das, and Bipin Chandra Pal.
The genesis of the Samiti can be traced to the formation of youth clubs devoted to the threefold aims of physical, mental, and moral development of the youth. The Samiti propounded revolutionary violence for ending the British Raj in India. Its two arms, the Dhaka Anushilan Samiti, centered in Dhaka, and the Jugantar Group, centered at Calcutta, were formed and organized on the lines of the secret societies of Russia and Italy. The Samiti was inspired by the thoughts, speeches, and writings of Swami Vivekananda and influenced by Bankim Chandra Chatterjee's Anand Math.
From 1907, the members belonging to the Anushilan Samiti were very active in revolutionary activities. Aurobindo Ghosh and Bipin Chandra Pal began the Bengali nationalist weekly Jugantar, New Era, and its English counterpart, Bande Mataram, in March 1906, that openly preached armed rebellion to create the necessary revolutionary mentality among Indians. The Muzaffarpur killing is one of the most famous events in the history of the revolution in Bengal. Both Khudiram Bose and Prafulla Chaki became heroes among the masses of Bengal. A bomb manufacturing factory was discovered in Maniktola Garden in Calcutta. Barindra Kumar Ghosh was brought to trial in the so-called Alipur conspiracy case. The Alipur trial led to a series of arrests and raids, culminating in the divisions in the Anushilan Samitis.
Alarmed by the revolutionary activities of the Samiti, the British took a series of measures to crush it. Their activities and that of the Ghadar Party led to the passage of the Defence of India Act 1915. After World War I, the draconian Rowlatt Acts were passed to deal with them. The Dhaka Anushilan Samiti apparently broke up when Pulin Das was arrested and deported for life. Master Das Surya Sen conducted the last revolutionary act in East Bengal at the Chittagong Armory Raid on the 18th of April 1930.
In the late 1930s, many members of Anushilan Samiti joined the Indian National Congress under the leadership of Subhash Chandra Bose. The Jugantar branch formally dissolved in 1938. In independent India, the party in West Bengal evolved into the Revolutionary Socialist Party, while the Eastern branch later evolved into the Shramik Krishak Samajbadi Dal in present-day Bangladesh.
We also remember Ghadarite revolutionary Gyani Pritam Singh, who actively used to promote patriotism amongst Indians in Thailand. In 1940, he was instrumental in the organization of the Independent League of India with the support of former colleagues in the Ghadar Party.
Pritam Singh worked in coordination with a Japanese intelligence officer to counter British power. Pritam Singh was selected as a member of a goodwill mission to Tokyo for holding informal discussions on Indian independence. However, after taking off for Tokyo, Japan, on the 24th of March 1942, his airplane crashed and he was killed. We salute the great freedom fighter, Gyani Pritam Singh.
Or और श्रोताओं अब याद कर रहे हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती या फिर जन्मदिवस है। इस कड़ी में सबसे पहले याद कर रहे हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह को जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने कहानी, गद्य, काव्य, उपन्यास, संस्मरण, नाटक सभी विद्याओं में साहित्य की रचना की। इनका संबंध देश के अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से रहा। राधिका रमन प्रसाद सिंह की गणना हिंदी के यशस्वी कथाकारों और विशिष्ट शैलीकारों में होती है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कुसुमांजलि, नवजीवन, पुरुष और नारी आदि शामिल हैं।
Today we are also remembering Muthuswami Dikshitar on his birth anniversary, who is considered one of the musical trinity of Carnatic music, and not just a poet but also a singer and veena player. His compositions were probably, you can say, rendered by most of the iconic musicians of the time, and we have one in M.S. Subbulakshmi's voice.
आज अभिनेता और टेलीविजन प्रेजेंटर फारूक शेख की जयंती है। ये समानांतर सिनेमा में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें शबाना आजमी के साथ तुम्हारी अमृता जैसे नाटकों में दमदार अभिनय करने का मौका दिया। उन्होंने सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी और प्रतिष्ठित उमराव जान जैसी फिल्मों में किरदारों में गहराई दी। शेख ने अभिनेत्री दीप्ति नवल के साथ विशेष रूप से सफल जोड़ी बनाई और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने चश्मे बदूर और साथ साथ जैसी फिल्मों को जगमगा दिया।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल।
प्रभाव सिल्वर स्क्रीन से परे भी फैला रहा। वे रेडियो पर एक जानी पहचानी आवाज थे। उन्होंने 70 के दशक में लोकप्रिय बिन्नी डबल और क्विट्स क्विज कॉन्टेस्ट की मेजबानी की। उन्होंने दूरदर्शन पर युवदर्शन और यंग वर्ल्ड जैसे शो होस्ट किए और जनता के मन में अपनी छवि बनाई।
And well, listeners, do you remember actor Prithvi, who made his Bollywood debut alongside Divya Bharti in the hit movie Dil Ka Kya Khusoor? Yes, the charming pair of Prithvi and Divya Bharti won hearts with their on-screen chemistry. The film's success catapulted Prithvi to overnight stardom, and he was flooded with offers from various films. However, despite his promising start, Prithvi's Bollywood journey took an unexpected turn, leaving him confined to smaller roles and eventually disappearing from the limelight. And today is actor Prithvi's birthday. We remember his one of his songs from the iconic film Dil Ka Kya Khusoor.
Har aashiq ho jata hai majboor, isme dil ka, mere dil ka, isme dil ka kya kusoor, aashiq mein.
आज पार्श्व गायक और संगीतकार पेपॉन का भी जन्मदिन है। इन्होंने वर्ष 1998 में एल्बम स्निग्धा जुनाक के असमिया गीत नसाबा सोकले से अपने संगीत के सफर की शुरुआत की। वर्ष 2004 में उन्होंने अपना पहला एल्बम जुनाकी राती रिलीज किया। 2015 में उन्होंने हिंदी फिल्म दम लगा के हईशा के लिए मुंह मुंह के धागे और हमारी अधूरी कहानी में गीत हमनवा गाया। 2016 में उन्होंने फिल्म सुल्तान के लिए बुलिया गाना गाकर जनता का दिल जीता।
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा मुझे अपना बना सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भीगा दे।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और सायरा मुश्तबा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। साथ ही हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। नमस्कार।